एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिसने दुनिया भर की सोच, कला और यहाँ तक की राजनीति को भी गहराई से छुआ है। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी साहित्य की।
नमस्कार। और इस सफर में हमारे साथ हैं जॉन डी लायंस के विचार। वो एक जाने माने विद्वान हैं जिन्होंने फ्रांसीसी साहित्य को समझने का एक बिल्कुल कह सकते हैं नया नजरिया पेश किया है। आज हम उनकी कुछ किताबों के जरूरी विचारों और विश्लेषणों को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं है, है ना? सोचिए, क्या साहित्य सिर्फ मनोरंजन है, या ये समाज को आईना दिखाता है, या शायद जैसा लायंस बताते हैं, साहित्य खुद समाज और पहचान को गढ़ने का एक जरिया बन जाता है।
किसी साहित्य के जरिए आज भी अहमियत रखते हैं। हम अक्सर फ्रांसीसी साहित्य को एक बनी बनाई चीज मान लेते हैं, जैसे वो हमेशा से वैसा ही था, लेकिन लायंस हमें दिखाते हैं कि ये पहचान कैसे धीरे धीरे, मतलब सोच समझ कर गढ़ी गई।
अच्छा, तो चलिए पहले जॉन डी लायंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन है ये
जॉन डी लायंस? कोई मामूली नाम नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में फ्रेंच और फ्रेंकोफोन स्टडीज के प्रोफेसर हैं और 30 सालों से ज्यादा समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित जगह से पीएचडी की है।
और उनकी खासियत क्या है? मतलब बहुत से लोग साहित्य के इतिहास पर बात करते हैं।
हाँ, लायंस थोड़ा हटकर सोचते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कौन सी किताब अच्छी है, बल्कि ये पूछते हैं फ्रांसीसी साहित्य का जो इतना रुतबा है, जो एक खास पहचान है, वो बनी कैसे? खासकर 17वीं सदी, जिसे क्लासिकल युग कहते हैं, उसके नियम कानून, संस्थाएं, जैसे वो मशहूर अकेडमी फ्रांसेज है।
अच्छा, वो अकेडमी जो भाषा के नियम बनाती थी।
हाँ बिल्कुल, वही। तो इन सब ने मिलकर कैसे इस साहित्य को एक खास शक्ल दी, उनका फोकस इस प्रक्रिया पर है।
ये तो दिलचस्प है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी किताब मशहूर है, बल्कि ये समझाते हैं कि किसी किताब या लेखक को महान या फ्रांसीसी साहित्य का हिस्सा माना ही क्यों गया। उनका नजरिया ऐतिहासिक भी है और सैद्धांतिक भी,
और मुश्किल बातों को भी बड़े सरल अंदाज में पेश करते हैं। यही चीज उनके काम को इतना पठनीय बनाती है, यू नो।
तो उनकी किताबों का निचोड़ क्या है? आपने कहा कि वो मानते हैं कि ये घड़ी हुई पहचान है।
हाँ, लायंस का सबसे बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क ये है कि फ्रांसीसी साहित्य कोई प्राकृतिक उपज नहीं है, जैसे जमीन से कोई फसल उगती हो। नहीं, ये एक निर्मित चीज है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं।
मतलब इसे जानबूझकर बनाया गया।
काफी हद तक हाँ। लायंस कहते हैं कि ये सदियों की बहसों, फैसलों और संस्थाओं का नतीजा है। भाषा कैसी हो, कौन सा इलाका फ्रांस माना जाए, साहित्य के नियम क्या हों, तर्क की कितनी अहमियत हो, लेखक की समाज में क्या भूमिका हो, इन सब सवालों के जवाबों ने मिलकर धीरे धीरे फ्रांसीसी साहित्य की अवधारणा को गढ़ा है।
बाप रे, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। यानी साहित्य सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, बल्कि एक पूरी पहचान बनाने की प्रक्रिया है।
बिल्कुल। और लायंस ये भी समझाते हैं कि इस साहित्य का दुनिया भर में इतना असर क्यों रहा। उनके मुताबिक ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कलात्मक नयापन, गहरी सोच मतलब दार्शनिक गहराई, और समाज से जुड़ाव, इन तीनों का एक अनूठा संगम मिलता है।
अच्छा,
फ्रांसीसी लेखकों ने हमेशा अपनी भाषा और समाज की बात करते हुए भी कुछ ऐसा कहा जो पूरी इंसानियत के लिए मायने रखता था, एक तरह से खास को आम बना दिया।
अच्छा, तो ये कैसे हुआ, ये निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है भाषा और जमीन से, मतलब स्पेस से। लायंस याद दिलाते हैं कि फ्रांस या फ्रांसीसी भाषा हमेशा से एक जैसी नहीं थी। बहुत पहले लोग अलग अलग बोलियां बोलते थे, फिर धीरे धीरे खासकर पेरिस के आसपास की बोली को मानक बनाने की कोशिश हुई।
मानक बनाने की कोशिश?
हाँ, जैसे 1539 में एक शाही फरमान आया जिसने कानूनी कामों में इसी पेरिस वाली बोली को जरूरी बना दिया। ये एक तरह से भाषा को एक करने और साथ ही दूसरी बोलियों को हाशिए पर डालने की शुरुआत थी।
और साहित्य का क्या हुआ?
उसी दौर में लैटिन की जगह लोग अपनी स्थानीय भाषा मतलब वर्नैक्युलर में लिखने लगे, वीर गाथाएं, दरबारी प्रेम कहानियां वगैरह। लेकिन असली मोड़ आया 17वीं सदी में, जिसे क्लासिकल युग कहते हैं। यहाँ नियमों का बोलबाला हो गया।
नियम? साहित्य में नियम? ये कैसे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है।
हाँ, नियम 1635 में वो संस्था बनी, एकेडमी फ्रांसिस। इसका काम था भाषा को शुद्ध करना और साहित्य के लिए कायदे कानून बनाना, जैसे नाटक के लिए मशहूर 3 एकता के नियम, यानी कहानी एक ही दिन में एक ही जगह पर घटे और उसका एक ही मुख्य प्लॉट हो।
तो क्या लेखक इन नियमों से बंध गए? क्या इससे रचनात्मकता खत्म नहीं हुई?
यही तो मजा है। लायंस कहते हैं कि ये नियम सिर्फ बंधन नहीं थे, कुछ लेखकों ने इन्हीं नियमों के अंदर रह के कमाल का काम किया, कुछ ने नियमों को चुनौती दी, जैसे कॉर्ने नाम के नाटककार थे जिनके नाटक लेसिड पर तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था।
अच्छा, विवाद?
हाँ, क्योंकि वो नियमों पर खरा नहीं उतरता था पूरी तरह से। फिर कुछ लेखक थे जैसे रैसीन, जिन्होंने इन्हीं सीमाओं में रह के इंसानी भावनाओं की इतनी गहरी पड़ताल की, कमाल है। और मॉलियर जैसे लेखकों ने तो इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके समाज की कुरीतियों का मजाक उड़ाया, उसी समाज का जो इन नियमों को मानता था।
वाह, मतलब नियमों ने एक तरह से चुनौती दी और उस चुनौती से नई चीजें निकली।
ये नियम किस लिए थे वैसे? सिर्फ अनुशासन के लिए।
लायंस बताते हैं कि ये नियम वेरिसिमिलेंस, मतलब जो सच जैसा लगे, विश्वसनीय हो, और बियंसियंस, यानी जो समाज में दिखाने लायक हो, शिष्ट हो, जैसी चीजों से जुड़े थे। इनका मकसद एक तरह का बौद्धिक आनंद पैदा करना था जो तर्क और नियंत्रण पर आधारित हो। ये उस दौर की खास सोच को दिखाता है।
अच्छा, तर्क की बात आई तो अगला दौर शायद इसी से जुड़ा होगा, 18वीं सदी, जिसे ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं।
बिल्कुल, इस दौर में तर्क, स्पष्टता, जिसे फ्रेंच में क्लार्ते कहते हैं, और बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया। डेकार्ट जैसे दार्शनिकों का प्रभाव था, वोल्टेयर जैसे लेखकों ने अपनी साफ, तर्कपूर्ण और अक्सर व्यंग्यात्मक शैली से अंधविश्वास और जुल्म पर चोट की। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है।
मतलब कुछ और भी था? मतलब ये कि तर्क के साथ साथ भावनाएं भी थीं। ज़ियाजाक रूसो जैसे विचारक थे जिन्होंने तर्क के बजाय दिल की आवाज, भावनाओं और प्रकृति की ओर लौटने की बात की। उनसे पहले पास्कल जैसे लोग थे जो धर्म और आस्था की गहराई में उतरे, जो सिर्फ तर्क से समझाई नहीं जा सकती। तो फ्रांसीसी साहित्य में ये तनाव हमेशा रहा है, तर्क बनाम भावना, व्यवस्था बनाम व्यक्ति की आज़ादी, एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश।
और फिर आया 19वीं सदी का दौर, जब उपन्यास सबसे अहम बन गया। यहाँ व्यक्ति और समाज का रिश्ता कैसे दिखाया गया?
ये यथार्थवाद, रियलिज्म और प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म का जमाना था। उपन्यास एक तरह की सोशल लैब बन गया। लेखक ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि समाज, पैसा, वर्ग, माहौल इंसान की जिंदगी को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। स्टेंडल के नायक महत्वाकांक्षी थे, सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहते थे।
और बाल्जाक, उनका नाम भी आता है।
हाँ, बाल्जाक ने तो अपने उपन्यासों की सीरीज ल कोमेडी उमेन में पूरे फ्रांसीसी समाज का नक्शा ही खींचने की कोशिश की, जैसे कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा हो।
और फ्लोबेर की मैडम बावरी का भी जिक्र आता है अक्सर।
हाँ, फ्लोबेर की मैडम बोवरी एक मील का पत्थर है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की बड़ी बड़ी रोमांटिक ख्वाहिशें समाज की छोटी घुटन भरी सच्चाई से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। यहाँ साहित्य समाज का आईना भी है और उसकी आलोचना भी। ये दिखाता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, वो समाज के जाल में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं।
ये तो हुई साहित्य के अंदर की बात, लेकिन लेखक की समाज में क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ कमरे में बैठकर लिखता था?
फ्रांसीसी परंपरा में ये बात बहुत खास है। वहां लेखक को अक्सर सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एकरीवान अंगाजे, यानी एक प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी माना जाता है। एक ऐसा लेखक जो समाज और राजनीति के मुद्दों पर बोलता है, अपनी राय रखता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है।
कोई उदाहरण है इसका?
सबसे मशहूर उदाहरण है ड्रेफस कांड। 19वीं सदी के अंत में एक यहूदी फौजी अफसर पर झूठा जासूसी का आरोप लगा था। तब लेखक एमिल ज़ोला ने एक खुला पत्र लिखा, जक्यूज, मैं आरोप लगाता हूँ। इसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया और आखिरकार सच्चाई सामने आई।
अच्छा,
तो ये दिखाता है कि लेखक की कलम में कितनी ताकत हो सकती है।
बिल्कुल,
और ये परंपरा तो बाद में भी जारी रही। 20वीं सदी में सार्त्र और कामू जैसे दार्शनिक लेखकों ने इसे और आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि लिखना एक नैतिक जिम्मेदारी है, चुप रहना भी एक तरह का चुनाव है। लेकिन लायंस एक और अहम बात जोड़ते हैं, फ्रेंकोफोन साहित्य।
अच्छा।
यानी फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों के लेखक जो लिखते तो फ्रेंच में हैं, लेकिन अपने नजरिए से अपनी पहचान के साथ।
अच्छा, ये भी फ्रांसीसी साहित्य का हिस्सा माना जाता है।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एमए सेजर जो मार्टिनिक से थे, या सेनेगल के लियोपोल्ड सेडार सेंघोर, इन्होंने उसी फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल औपनिवेशवाद की आलोचना करने और अपनी अफ्रीकी या कैलिबियाई पहचान, जिसे उन्होंने नेग्रिट्यूड कहा, को स्थापित करने के लिए किया। ये दिखाता है कि भाषा कैसे सत्ता और प्रतिरोध दोनों का औजार बन सकती है। इसने फ्रेंच साहित्य की परिभाषा को और जटिल और समृद्ध बनाया।
और आखिर में 20वीं सदी के नए प्रयोगों की बात भी है, लगता है वहां तो सब कुछ बदल गया होगा।
हाँ, 20वीं सदी में तो लेखकों ने भाषा, कहानी कहने के तरीके, हर चीज के साथ जबरदस्त प्रयोग किए। मार्सेल प्रूस्ट ने यादों और समय के एहसास को जैसे शब्दों में उतारा, वो अद्भुत है। फिर अति यथार्थवाद, सुरियलिज्म आया आंद्रे ब्रितों के नेतृत्व में, जिसने तर्क को खारिज करके सपनों और अवचेतन मन की दुनिया को खंगाला।
ये तो बहुत ही अलग है।
और कुछ ने तो किताब को सिर्फ पढ़ने की नहीं, देखने की चीज भी बना दिया। जैसे कवि मलार्म ने शब्दों को पन्ने पर इस तरह सजाया कि खाली जगह भी अर्थ देने लगे। या फिर न्यूवो रोमान आया, जिसने पारंपरिक कहानी, चरित्र, सबको चुनौती दे डाली। मतलब प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहे।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा और फैला हुआ संसार है। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी, निचोड़ क्या है इसका?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात लायंस के हवाले से यही है कि साहित्य, खासकर राष्ट्रीय साहित्य, सिर्फ अपने आप पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। ये एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट होता है जो भाषा, नियमों, संस्थाओं के जरिए एक पहचान गढ़ता है। फ्रांसीसी साहित्य इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये हमें किसी भी राष्ट्रीय चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
दूसरी बात शायद नियमों और आजादी के बीच का वो तनाव है जिसके बारे में हमने बात की। ऐसा नहीं है कि नियम हमेशा बुरे होते हैं, कभी कभी सीमाएं ही आपको ज्यादा रचनात्मक बना देती है, है ना?
बिल्कुल। फ्रांसीसी लेखकों ने ये दिखाया कि परंपरा के अंदर रहकर भी नयापन लाया जा सकता है, अतीत से जुड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है।
तीसरा, वो लेखक की सामाजिक भूमिका, एक्रिवे अंगाजे वाली बात। फ्रांसीसी परंपरा में ये विचार बहुत मजबूत है कि लेखक की समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। वो सिर्फ अपनी कला के लिए नहीं लिखता, बल्कि समाज से संवाद करता है, सवाल उठाता है।
हाँ, और ये सोचना दिलचस्प है कि क्या आज भी हम लेखकों से यही उम्मीद करते हैं, या क्या लेखकों को खुद ऐसा महसूस करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है।
और चौथी बात शायद ये कि कैसे कोई साहित्य अपनी जमीन से जुड़ा होकर भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बन जाता है। फ्रांसीसी साहित्य ने अपने अनुभवों को इस तरह पेश किया कि उसमें पूरी इंसानियत को अपनी झलक मिली, और इसमें फ्रेंकोफोन साहित्य का योगदान भी अहम है।
हाँ, उसने फ्रांस होने की परिभाषा को और बड़ा और समावेशी बनाया, उसे चुनौती भी दी। ये दिखाता है कि संस्कृति स्थिर नहीं होती, वो संवाद से बदलती है।
लायंस के कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि फ्रांसीसी साहित्य हमेशा से कला, समाज और राजनीति के बीच एक पुल रहा है। ये सिर्फ कला कला के लिए वाली बात नहीं थी।
सही कहा। और वो नियमों वाली बात भी मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि कैसे क्लासिकल युग की प्रतिभा नियमों को मानने में नहीं, बल्कि उनके भीतर रचनात्मकता खोजने में थी। अक्सर बाधाएं आपको उड़ने के लिए पंख दे देती हैं।
हाँ, और ये भी कि समाज में बड़े बदलावों से पहले या उनके साथ साथ साहित्य में भी नए प्रयोग होते हैं, जैसे साहित्य आने वाले कल की आहट सुन लेता हो, एक तरह का कल्चरल बैरोमीटर।
बिल्कुल। और शायद सबसे बुनियादी बात जो शायद हमें हर राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि ये पहचान कितनी प्राकृतिक है और कितनी गढ़ी हुई। लायंस दिखाते हैं कि फ्रांसीसी साहित्य को बड़ी मेहनत और सोच समझकर बनाया गया था, ये परिभाषित करते हुए कि फ्रेंच क्या है, साहित्य क्या है और उत्कृष्ट क्या है। ये कोई हवा में बनी चीज नहीं थी।
इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है, कैसे काम आ सकती हैं ये बातें?
देखिए, एक तो ये हमारी आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करता है। जब हम समझते हैं कि कैसे कहानियां या विचार घड़े जाते हैं, कैसे राष्ट्रीय पहचान बनाई जाती है, तो हम अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा सवालिया नजर से देख पाते हैं। हम किसी भी नैरेटिव को, किसी भी कहानी को जस का तस स्वीकार नहीं करते।
ये तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और रचनात्मकता के लिहाज से
वो नियमों के भीतर आजादी खोजने वाली बात, ये किसी भी क्रिएटिव काम में लागू होती है, चाहे कोई डिजाइनर हो, इंजीनियर हो या घर चला रहा हो। अक्सर हमें सीमाओं में रहकर ही सबसे अच्छा समाधान निकालना पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि बाधाओं से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें एक चुनौती की तरह लें, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
सांस्कृतिक समझ के तौर पर भी ये अहम है। हम फ्रांसीसी संस्कृति, भाषा के प्रति उनका लगाव, बुद्धिजीवियों की भूमिका, बहस की परंपरा को बेहतर समझ सकते हैं, और ये हमें अपनी संस्कृति पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हमारे यहाँ लेखक या कलाकार की क्या भूमिका मानी जाती है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसी कोई एंगेजे परंपरा है?
तो कुल मिलाकर इस चर्चा से क्या लेकर जाएं हम सब?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ताकतवर चीज है जो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे समाज को शक्ल दे सकती है। और कोई भी पहचान, चाहे वो फ्रांसीसीपन हो या कुछ और, पत्थर की लकीर नहीं होती, वो बनती है, बदलती है, उस पर बहस होती है, वो हमेशा विकास करती रहती है।
मुझे व्यक्तिगत रूप से वो एखरीवाय अंगेजे का विचार बहुत प्रभावित करता है। ये सोचना कि लिखने का काम सिर्फ आत्माभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। क्या आज के दौर में, जब हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है सोशल मीडिया वगैरह पर, इस विचार की कोई अहमियत है या शायद और ज्यादा है? ये सवाल मेरे मन में घूम रहा है।
परंपरा और नयापन, ये सब एक साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं। ये एक उम्मीद जगाता है कि गहरी सोच और सामाजिक सरोकार साथ साथ संभव है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।